जो वेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, क्या प्रमुख इसमें बातें कही गई?
वेस्ट रिपोर्ट में 2019 के वर्ष का आर्थिक विश्लेषण हुआ है और वो निकल के जो आता है उसके एक मेन हाईलाइट के 2019 का वर्ष जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब वर्ष रहा। इसमें जो आर्थिक विकास की दर है वो 2.3% पे पूरे एक दशक में सबसे कम रही, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये सबसे खराब विकास की दर रही। और उसका कारण जो है ये कि ट्रेड वॉर्स की वजह से उसमें काफी उथल पुथल और एक अनसर्टेनिटी का माहौल अर्थव्यवस्था में रहा। उसका असर सारे देशों पर पड़ा, लेकिन इस रिपोर्ट में एक आशा व्यक्त की गई है कि अब आने वाला वर्ष जो है 2020-21 का, उसमें विश्व अर्थव्यवस्था में भी एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या सुधार की संकेत मिलेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यही विश्लेषण दिखाया गया है कि अभी आर्थिक विकास की दर जो 5% पे नीचे चली गई थी वो अब धीरे धीरे उभरनी शुरू होगी। अगले साल में हम समझते हैं कि 5.8 या 9 और या 6% तक ये विकास की दर हो सकती है। ये अगर एक विकास का ट्रेंड शुरू होता है तो उससे कई सारी चीजें, जैसे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और भारत में अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं होंगे तो विश्व के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा उनको अचीव करना, तो उसको भी एक मदद मिलेगी। अगर विकास की दर बढ़ती है तो उससे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे जो गरीबी की दर है उसको गिराने में, उसको एलिमिनेट करने में आसानी होती है।
तो आपने भारत की बात की, अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें पूरे की, तो बाकी देश और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या आगे उम्मीद करें?
दक्षिण एशिया में भारत के जो नेबरिंग या पड़ोसी मुल्क हैं उसमें देखें तो बांग्लादेश एक इकोनॉमी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पिछले वर्ष में जिस वर्ष में सारे दुनिया के देशों में मंदी या विकास की दर गिरने का ट्रेंड था, उस साल में भी बांग्लादेश ने 8% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई। और उसका कारण ये है कि बांग्लादेश में एक स्थायी सरकार है और वह अच्छी नीतियों का पालन कर रही है, और वहाँ पर एक ये जो रेडीमेड गारमेंट्स में उन्होंने बड़ी महारत हासिल की है, और जो चीन और अमेरिका के बीच में जो व्यापार का युद्ध जो चल रहा है एक तरह से, तो उसका फायदा वो उठा पाए, क्योंकि बहुत सारे जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो जो चाइना से एक्सपोर्ट करते थे अब वो अपना रिलोकेट कर रहे हैं वियतनाम में या बांग्लादेश में, दूसरे ऐसे ही। बांग्लादेश ने उसका फायदा उठाया और उससे उनकी विकास की दर और तेज हुई है, और आशा है कि ये आने वाले वर्षों में भी बांग्लादेश ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। साथ में दूसरे देश हैं, उनमें भूटान ने भी अच्छी विकास की दर रिपोर्ट की है 6% से ऊपर। वो क्लियर थिंक किंग वाली पॉलिसी है कि अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संपदा उनकी है, उसको हार्नेस करें और उसमें हाइड्रो पावर वो उसको उसमें निवेश कर रहे हैं भारत के साथ मिलके, और अब बांग्लादेश और नेपाल भी उस दिशा में जा रहे हैं। बांग्लादेश भी भूटान से ये हाइड्रो पावर को इम्पोर्ट करना चाहता है, तो उनका भी आई थिंक मेरे ख्याल से विकास का जो कार्यक्रम है बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय थोड़े मुश्किल से गुजर रही है, वहाँ पर एक IMF का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, तो एक ट्रांजिशन पीरियड की स्थिति है, और जैसे जैसे वो जोर पकड़ेगा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट तो धीरे धीरे रिसोर्सेज रिलीज होंगे, एंड फिर वो सरकार उन रिसोर्सेज को स्पेंडिंग में यूज करके आर्थिक विकास की दर बढ़ा पाएगी।
तो इस इकोनॉमी की रिकवरी के लिए वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौती?
वैश्विक स्तर पे भी हम समझते हैं कि 2020 में ये थोड़ी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। एक तो अभी खबर आई है 2-3 दिन पहले कि जो चीन और अमेरिका का जो व्यापार समझौता था उसका फेज 1 पूरा हो गया है, वो एक अच्छी खबर है। उससे सारे विश्व में स्टॉक मार्केट्स ने संकेत दिया है कि उसको एक अच्छी खबर की तरह से देखा गया है। तो एक जो रुकाव सा आ गया था विकास में, व्यापार में, विश्व व्यापार में, वो अब थोड़ा थोड़ा सुधरना चालू होगा, और आशा कर सकते सकते हैं कि आने वाले समय में वो जो उसका फेज टू है वो भी नेगोशिएट हो जाएगा और जो इश्यूज हैं वो रिजोल्व हो जाएंगे।
तो जलवायु संकट को भी आर्थिक संकट से जोड़कर देखा जा रहा है इस रिपोर्ट में, उसके बारे में क्या विस्तार से?
इस रिपोर्ट में एक्चुअली बड़ी एक कंसर्न दिखाई गई है कि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब जो संकट जो पैदा हो रहा है सारे देशों के ऊपर और ख़ास तौर से दक्षिण एशिया जो हमारा रीजन है उसमें एक वर्स्ट अफेक्टेड वाला रीजन उभर के आता है। तो इसका जो समाधान के लिए एक तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फेसिस दिया है क्योंकि 75% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स हैं वो इस एनर्जी सेक्टर से होते हैं और अगर सारे देश मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं कि वो जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसको मतलब ट्रांजिशन करें कि सोलर हाइड्रो एंड विंड पावर पे फोकस करें तो उससे ये एक तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा साथ में जो पर्यावरण को सुधारने में मदद मिलेगी। अब जैसे एयर पोल्यूशन के लेवल्स बहुत बड़े शहरों में भारत में और अदर दूसरे कंट्रीज में बहुत गिर गए हैं तो एयर पोल्यूशन को भी मीट करने में आसानी होगी और उसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख रहे हैं वो उनको सोल्व करने में भी आसानी होगी। अगर हम क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करें तो उसका डिमांड पर भी असर पड़ता है और एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता है तो उसका मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा।
तो ये तो समाधान की बात है, क्या कुछ खतरे भी हैं, कुछ रिस्क हैं?
बिल्कुल, एक तो जियो पोलिटिकल टेंशंस जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में इस समय बनी हुई है उसका एक बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है कि जो ऑयल सप्लाईज हैं उसके ऊपर मतलब फ़र्क पड़ सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो मतलब बहुत सारे जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, जैसे भारत भी एक उनमें शामिल है। तो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो ट्रेड टेंशंस हैं, व्यापार से रिलेटेड टेंशंस हैं, मैंने बताया कि चीन और अमेरिका का एक समझौता हो गया है लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज बाकी हैं जैसे यूएस और ईयू के बीच में व्यापार के कुछ टेंशंस हैं, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भी चल रहा है कुछ। तो ऐसे ऐसे ये एक जो पेंडिंग इश्यूज हैं अगर वो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं आने वाले समय में तो उनका असर फिर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
तो इन सब समाधानों को लेकर यूएन की क्या भूमिका रहेगी?
यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पे आप इकट्ठे बैठ के अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करते हैं। तो ये जो समय है इसमें 3-4-5 ऐसे इश्यूज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज या फाइनेंसिंग फॉर डिवेलपमेंट या ट्रेड के जो मैटर्स हैं, ये कोई भी सरकार अपने बलबूते पे इनको रिजोल्व नहीं कर सकती तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन या ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म एक देते हैं, आपको एक जगह देते हैं, स्थान देते हैं जहाँ पर आप बैठ के उनको रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो आखिर में अगर संक्षेप में आप बता सकें कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसको देखते हुए आप भविष्य में जो आर्थिक व्यवस्था है उसको किस तरह आंकते हैं?
मेरे ख्याल से आने वाला समय 2021 का समय अच्छा होने वाला है पहले सालों के मुकाबले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं और कुछ करना बंद कर दें। तो जो खतरों से जो सावधानी रखने की इसमें जो संभावनाओं का जिक्र किया है उनको ध्यान में रखते हुए अपने कुछ जो रिफॉर्म्स हैं उनको परस्यू करते रहें तो आने वाला समय अच्छा साबित होगा।